अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाडं नमो उवर्जायाडं नमो लोय सर्वसाहूणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदात्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं जनानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु विशासिनं जैनं जयतु विशासिनं जैनं जयतु विशासिनं। तीनों भुवन में सार दीप राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समारिते। हम छह चाला की दूसरी ढाल पर ग्रहीत मिथ्यात्व को अभी पढ़ रहे हैं। अब सबको आवाज अभी क्लियर आ रही है? हाँ
जी
ओके। लास्ट क्लास में पढ़ा था कुदेव का स्वरूप, राइट? कुदेव के स्वरूप में हमने देखा था जो राग द्वेष मल करी मलिन वनिता गदादि जित चिन्ह चीन ते हैं कुदेव तिनकी जुसेर षट करत नसिन भव भ्रमण क्षेत्र। फर्स्ट थिंग वी डिफरेंशिएटेड बिटवीन राग द्वेष होना और राग द्वेष से मलिन होना। राग द्वेष तो मोक्ष मार्ग में जो चल रहे हैं उनके भी हो सकते हैं, लेकिन वे राग द्वेष के कर्ता नहीं बनते, राग द्वेष को अच्छा नहीं मानते। जो कुदेव हैं उनको राग द्वेष में कार्य करने में ही अपनी महानता लगती है, राइट? तो वो अपने पूरे इतना भयानक रूप बनाएंगे, उनके हाथ में त्रिशूल होगा, गले में उनकी हड्डियों की माला होगी, ऐसे करके। तो ये सब राग द्वेष के चिन्ह हैं और उनसे वो अपने आप को महान मानते हैं, क्रूर मानते हैं, शक्तिशाली मानते हैं, राइट? तो ये राग द्वेष मल से वो क्या है, मलिन है, मतलब राग द्वेष को भला जानते हैं। ये कौन से तत्व संबंधी भूल हो गई? आश्रव तत्व संबंधी भूल। जो दुख के कारण है वो उनको अच्छे सुख के कारण लगते हैं, अपनी महानता के कारण लगते हैं। तो राग द्वेष मल कर्मणि और वनिता यानी कि उनकी पत्नी, गदा गदा अलग अलग, ये अलग अलग टाइप के अस्त्र होते हैं, उनके शस्त्र अस्त्र होते हैं, उनसे इनसे वो पहचाने जाते हैं कि भैया जो हनुमान जी होंगे उनके पास गदा होगी, राम जी के पास धनुष होगा, कृष्ण जी के पास एक चक्र होगा, राइट? तो शंकर जी के पास एक त्रिशूल होगा। ऐसे करके इनके सबके अलग अलग क्या है, चिन्ह हैं जिनसे ये पहचाने जाते हैं। और ऐसे सब जो कि राग द्वेष से मलिन अंतर में हैं और बाहर में ऐसे चिन्हों से पहचाने जाते हैं, वे सभी मिथ्या देव हैं, कुदेव हैं। उनकी जो सेवा करते हैं वे मूर्ख हैं, शठ हैं, और उनके भव भ्रमण का कभी भी नाश नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने इसमें लास्ट टाइम बहुत सारी बातें करी थी कि इनको मानने से दर्शन मोहिनी का तीव्र बंध होता है और दर्शन मोहिनी कर्म से हमें बहुत घाटा है, क्योंकि वही कर्म से हमें मिथ्यात्व है। सच्चे देव के सामने आने से दर्शन मोहिनी कर्म बहुत ढीला पड़ जाता है और उसी से हमको सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भगवान के दर्शन को साक्षात सम्यक दर्शन का निमित्त बोला है, राइट? तो भगवान का दर्शन हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त बनता है, ठीक है, सच्चे भगवान का। और इसी का उल्टा, यदि हम उल्टे भगवान कुलदेव कुदेवों को जो मिथ्या देव है उनको पूजेंगे तो सम्यक दर्शन का उल्टा मिथ्या दर्शन, सच्चे देव को पूजने से सम्यक दर्शन में निमित्त, तो उल्टे खोटे देव वो किसमें निमित्त? मिथ्या दर्शन में निमित्त, हमारे मिथ्यात्व को और पुष्ट करने में वो निमित्त होते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन एनीवन?
नहीं अनुभव जी, सॉरी
यस
आई ब्रिंग ऑल दिस
हाँ हाँ
क्वेश्चन।
प्लीज प्लीज से
आज मंदिर में हमारे मेरे एक और साथी के साथ बात हुई, तो वो बोलते कि हम श्वेतांबर के मंदिर में जाते हैं तो मैं तो वहाँ नमस्कार करती हूँ। मैंने बोला कि नहीं, हमारे देव वितराग होते। तो वो बोलती कि मगर वो तो लोगों ने उनको रागी बना दिए हैं, वो थोड़े रागी है। तो मैंने बोला कि नहीं, वो हमारे दिगंबर के अनुसार उनकी अंतर्मुख मुद्रा नहीं होती है, इसलिए उसको नमस्कार नहीं करना है, क्योंकि वो अपने भगवान अपने में लीन है। तो उसमें मेरी कुछ वैसे मिस्टेक के उसके पर के थोड़ा, अगर इफ इट्स नॉट आउट ऑफ
हाँ हाँ
इसके, तो
करेक्ट।
आप प्लीज
देखिए क्या
थोड़ा।
हुआ था, जब अकलंक और निकलंक थे, राइट, अकलंक निकलंक एवरीबॉडी नोज, नाम सुना अकलंक और निकलंक का? दो दो बच्चे थे और ये दोनों छोटे थे, और इन लोगों ने बचपन में मुनिराज आए, तो इन लोगों ने, मम्मी पापा ने ब्रह्मचर्य लिया, तो इन लोगों ने भी ब्रह्मचर्य ले लिया, बट स्पेसिफाई नहीं किया कब तक लिया है। तो फिर इनकी शादी की तैयारियां होने लगी, तो फिर उन्होंने पूछा क्या चल रहा है अपने पापा से, क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला तुम्हारी शादी की तैयारियां हो रही हैं। फिर अरे आप लोगों ने तो मैं ब्रह्मचर्य दिलाया था, ये शादी की बात कहाँ से आ गई? तो पापा बोलते अरे हमने तो वो मजाक मजाक में, वो तो 8 दिनों के लिए लिया था, अष्टानी का चल रहे थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये सब हम लोगों ने तो वहां पर तभी ब्रह्मचर्य ग्रहण किया था, और हम लोग तो शादी नहीं करेंगे। तो उनके पापा चिंता में, तो फिर क्या करोगे? कि उन्होंने बोला देखिए अभी बौद्ध लोगों का धर्म बहुत बढ़ गया है, और ये लोग हमारे मंदिरों को, हमारे धार्मिक को बहुत, और हमारे मुनिराजों को बहुत परेशान करते हैं, तो हम लोग इस धर्म को पढ़ के जैन धर्म की प्रभावना करेंगे। तो आप हमको तक्षशिला, वहाँ तब भी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम की, आप वहाँ पर हमको जाके पढ़ने की अनुमति दो। तो ये दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, वहाँ पर बुद्धिज्म पढ़ने के लिए, वहाँ पर जैन बच्चों को नहीं लिया जाता था, तो इन्होंने बौद्धों का वेश बनाया और वहाँ पर ये पढ़ने लगे। ठीक है, अब एक दिन पढ़ रहे थे और एक दिन पाठ चल रहा था, वो लोग जैन दर्शन को पढ़ा रहे थे, तो उनके जो शिक्षक थे वो पढ़ा रहे थे, उन्होंने, ये लोग बहुत होशियार थे, अकलंग को एक बार में याद हो जाता था, निकलंग को 2 बार कोई बात सुने तो वो याद हो जाती थी, ठीक है, कभी नहीं भूलते थे, फिर मेमोराइज हो जाती थी। अकलंग यदि एक बार सुन ले तो ही रिमेम्बर फिट फॉर लाइफ टाइम, निकलंग यदि 2 बार सुन ले तो ही रिमेम्बर फिट फॉर लाइफ टाइम। ओके, तो नाउ व्हाट हैपेंड के बात आई, आत्मा है और आत्मा नहीं है, जीव अस्ति जीव नास्ति। तब उसको समझ में नहीं आया, तो सुमल देखो जैन लोग क्या पागलपन की बात करते हैं, आत्मा है और आत्मा नहीं है, ये क्या बात हो गई, एक बात बोलो कोई, कुछ भी बोल रहे हैं लोग तो। और वो हंसी उड़ाकर चला गया। तो फिर उसको, लेकिन फिर भी लगा कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि जैन मुनिराज तो बहुत, उसको लगा जैन मुनिराज लोग तो बहुत वो होते हैं, गंभीर होते हैं, मतलब बहुत दिमाग वाले होते हैं, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के धारक होते हैं, तो उनसे ऐसा कैसे हो जाएगा? तो उसको समझ में नहीं आया, तो उसने बोला कि चलो अभी मेरा सिर दुख रहा है, हम आपको कल समझाएंगे। अगले दिन वो आया क्लास में, तो उसने देखा कि अब क्या लिखा है, आत्मा किसी अपेक्षा से है, आत्मा किसी अपेक्षा से नहीं है, जीवः स्याद् अस्ति जीवः स्याद् नास्ति। तो उसको बस समझ में आ गया, सही है, आत्मा किसी अपेक्षा से है किसी अपेक्षा से नहीं है, एकदम सही है। तो अब उसको अचानक से गुस्सा आया कि कल तो ये स्यात शब्द यहां पर नहीं लगा था, आज यहां पर स्यात शब्द किसने लगाया इस किताब में? जरूर यहां पर कोई जैन बच्चा है, अब हम कैसे पता करें कि कौन जैन है? ठीक है, तो उसने बहुत सोच विचार कर, अब ऐसे तो कोई मानेगा नहीं कि हम जैन है, तो बहुत सोच विचार कर उसने क्या किया, एक एग्जाम डिवाइस करी, उसने एक जैन मूर्ति को बुलाया भगवान की, ठीक है, उस मूर्ति को बुलाया, उस मूर्ति को रखा और सबसे एक एक करके बोला कि इस मूर्ति को आप नाक कर जाओ, इस मूर्ति के ऊपर से आप निकलो, यू हैव टू टेक अ स्टेप यू नो फ्रॉम अबव द मूर्ति, आपको मूर्ति को नाकना है। तो भैया अपने भगवान के ऊपर से हम कैसे नाकें, वो तो बहुत बड़ी अभिनय होगी। तो जो भी जैन बच्चा होगा वो अपने भगवान के ऊपर क्यों नाचेगा, और वो पकड़ा जाएगा, राइट? ये वाला एग्जाम उन्होंने डिवाइस किया, अब सारे बच्चों की लाइन लगाई गई और एक एक करके बोला। अब अकलन निकलन बड़ी टेंशन में, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो अपने भगवान के ऊपर नहीं। तो अकलन बहुत बहुत तेज थे। अकलन देव ने अपनी जो वो अपने कपड़े पहने थे, धोती पहने थे, उसमें से जल्दी से एक धागा निकाला, ओके, और बोला निकलन को कि देखो जब तुम जाओगे वहां पर, तब जल्दी से चुपके से ये वाला धागा, एकदम जैसे किसी को दिखे नहीं वाला धागा, गिरा देना। तो मूर्ति के ऊपर वो गिर जाएगा तो मूर्ति वीतरागी देव की नहीं बचेगी, और हमारे तो भगवान वीतरागी होते हैं, तो जब वो मूर्ति हमारे भगवान की नहीं है तो हम नाच सकते हैं, कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने वहां पर गए, छोटा सा धागा डाला मूर्ति के ऊपर, जैसे कोई देख नहीं पाए, एकदम मिस्टेक से होके हाथ में जैसे पकड़ी नहीं हो, एकदम छोड़ दिया उसको, कोई देख नहीं पाया, और फिर अच्छे खुशी खुशी वो नाच गए। और ऐसी अकलंग भी, अब तो ऑलरेडी धागा डला हुआ है, तो अकलंग देव भी जाकर पीछे से नाच गए। अब पूरे बच्चे नाच गए एकदम। अब जो टीचर थे उनको तो एकदम बहुत ही ज्यादा उनकी आंखें लाल कि यार कोई भी ऐसा कैसे हो सकता है, जैन बच्चा कैसे नाच सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, कैसे कोई नाच सकता है। तो उन्होंने फिर पास में मूर्ति के जाके देखा, वहां पर देखा कि मूर्ति के ऊपर से एक धागा पड़ा है। तो उनको अब पक्का विश्वास हो गया कोई ना कोई जैन तो अवश्य है, राइट? और फिर वो क्या करेंगे, रात में फिर बहुत तेज हल्ला करवाते हैं सबके रूम में, और फिर सारे बच्चे डर जाते हैं। तो फिर जो जैन बच्चे होते हैं वो लोग अरहन से दरहन से दरहन सिद्ध करके नाम, क्योंकि जैसे अपन लोग बोलते हैं ना डर जाते हैं, मम्मी क्या हुआ, ऐसे मम्मी का नाम लेते हैं। ऐसे पहले उन लोग के संस्कार होते थे, वो लोग भगवान का नाम लेते थे। जैसे ही लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं अचानक से रात को, लेट नाइट, व्हाट दे डू, सबके रूम के अंदर ये कुछ अपने नौकरों को छुपा देते हैं, और एक साथ सब लोग अच्छी तेज, जैसे कोई अर्थक्वेक आया इतनी तेज कोई शोर मचाने लगते हैं। तो बच्चों की अचानक से डर में नींद खुलती है, और नींद खुलती है जब डर जाते, तो हम सबसे पहले किसका, जो हमें अच्छा लगता है उसका नाम लेते हैं, हम लोग मम्मी पापा के नाम ले लेते हैं। तो अकलंग निकलंग ने अरहन सिद्ध नाम लिया, तुरंत उनको पकड़ लिया ये तो जैन है, और उनको फिर जेल डाल दिया, और उनको फिर मारने की सजा हो गई कि इनको कल भी फांसी दे दी जाएगी, या तो आप बौद्ध बन जाओ या फिर आप फांसी ले लो। फिर वो रात में जेल से भागते, और उसके आगे की बहुत लंबी स्टोरी है। फिर निकलंग जी का मरण हो जाता है, और अकलंग बहुत बड़े मुनिराज बनते हैं, उनके बहुत सारे ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, ठीक है? तो नाउ आपका कोई, अब वो ये बोल रहे हैं कि यदि भगवान तो वीतरागी हैं, लोगों ने उनकी मूर्ति पे लगाया है, हम लोगों ने उसको विकार किया है। तो विकार कोई भी करे, विकार कोई भी करे, जैसे कि हम जब भगवान का प्रक्षाल करते हैं तो धोती दुपट्टे पहनते हैं, तो उस समय यदि कोई आपको छू ले जिसने धोती दुपट्टे नहीं पहने हैं, तो आप भगवान को प्रक्षाल कर सकते हो क्या फिर से कि नहीं, हमारे पूरे कपड़े अशुद्ध हो जाते हैं, करेक्ट? मानस सही है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जब हम धोती दुपट्टे पहनकर भगवान के प्रक्षाल करने जाते हैं, उस समय हम किसी को नहीं छूते हैं जिसने धोती दुपट्टे नहीं पहने, है ना?
हाँ जी,
राइट, करेक्ट ना? तो फिर ऐसे तो बोलो कि यार हम थोड़ी, अब कोई या दूसरा आकर हमको छू ले तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि यार हमने थोड़ी उसको छुआ, उसने हमको छुआ, चलो हम तो प्रक्षाल कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट हु डिड इट, द क्वेश्चन इज कि क्या उस वीतराज देव का सच्चा स्वरूप बचा कि नहीं बचा। तो हम लोग जैसे वहां पर किसी ने टच किया हो या हमने किसी को टच किया हो, इन आइदर वेज हम लोगों की शुद्धि चली गई, वो तो फिर भगवान की मूर्ति है। तो भगवान की मूर्ति स्वयं में ही, उसमें आंखें बनी हो अलग से, स्वयं ही कपड़े पहने हो या हमने पहना ही हो, इन आइदर वेज वो मूर्ति की वीतरागता तो गई, इसके लिए उसको नमस्कार नहीं कर सकते। तो आपने जो बोला वो एकदम सही बोला उनसे, उनका ये कहना है कि वो तो हम लोगों ने, वो तो हम लोगों ने चढ़ाए हैं ना भगवान को, बट किसी ने भी चढ़ाए हो भगवान को कपड़े, किसी ने भी उनकी आंखें लगाई हो, भगवान की मूर्ति की वीतरागता नष्ट हुई है, इसके लिए वो भगवान की मूर्ति पूछने योग्य नहीं है। जब एक छोटे से धागे के कारण, चूंकि धागा एकदम पहनाया भी नहीं गया, ऊपर से गिर गया, उसके कारण वो बच्चों ने भगवान की मूर्ति को भगवान की मूर्ति नहीं माना था, फिर आप पूरी एक पूरे कपड़े पहना दिए जाए, पूरे में चंदन लगा दिया जाए, फूल चढ़ा दिए जाएं, तो वो वाले भगवान पूज्य कैसे हो सकते हैं?
हमारे
ओके
भगवान तो कुंद कुंद आमनाए के अनुसार वहां नीचे वो लिखा होता है, वो होते हैं ना, तो
हाँ
वो
बिल्कुल
भी मैंने उसको बोला, वो स्वतंबर के मुझको नहीं पता कि कैसे वहां क्या लिखा होता है।
उनकी शलाका, अंक शलाका होती है, वो अलग अंजन शलाका कहते हैं उसको, उनके पंच कल्याणकों को। उनकी
अच्छा, मैं वो मुझ
प्रोसेस ही अलग है, पंच कल्याणक भी अजीब ही होते हैं, तो पूरी वहाँ तो प्रोसेस पूरी अलग है, उसमें भी बहुत बहुत अलग। फिर देरासर वालों के होते हैं जो स्थानक वासी उनके नहीं होते, उसमें भी 13 पंथी उनके नहीं, उनके अलग कुछ होता है ऐसे करके। हमारे यहाँ 13 पंथ था, तो हमारे 13 पंथ किसको बोलते हैं? जिसके पास 13 कोड्स हैं। 13 कोड, हमने 13 रूल्स बनाए थे। क्यों बनाने पड़े थे? क्योंकि बीच में भट्टारक लोग हो गए थे और उन्होंने अपने को बाड़ा बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चला दी थी, जैसे कि भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, ऐसे ऐसे इन इनको दान देना चाहिए, आप फल फूल चढ़ाओ भगवान को, क्योंकि वो लोग मंदिर में ही रहते थे, सब कुछ उनको ही मिलता था, घी तेल दूध दही सब कुछ। तो उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बहुत सारी, और अपने आप को पूज्य बनाने के लिए वो अपने आप को आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी जितना पूज्य बताते थे। तो उसको, उससे बचने के लिए 13 कोट्स बने, जो 13 चीजें उन्होंने स्टार्ट करी थी, वो 13 चीजों को हमने बंद कराया, तो उसको बोला 13 पंथ। कोई 13 पंथ अलग से नया धर्म निकला हो ये नहीं था, 13 पंथ वॉज नथिंग बट द 13 कोट्स टू जस्ट उनको अलग करने की, जो कुरीतियां विद टाइम हमारे पास आ गई हैं वापस उनको अलग करने के लिए। तो ओरिजिनल धर्म ही हम उसको 13 पंथ भी नहीं बोलते, 13 पंथ इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि देर आर सम पीपल हु आर फॉलोइंग 20 पंथ, 20 पंथ है, 20 रूल्स हैं उनके, तो उन्होंने 20 एडिशनल रूल्स बना दिए, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलते कि हम लोग 13 पंथ वाले हैं, बाकी हम लोग सिर्फ दिगंबर जैन है, द ओरिजिनल पथ इज दिगंबर, हमारे में पंथ नहीं होता, राइट? तो दिगंबर जो शुद्ध आमनाए है उसमें ही ये वाली सारी बातें हमारी, पंच कल्याणक की प्रतिमा की स्थापना की ये वाली इस रीति से हो, तो ही ये वाली प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती हैं। ये प्रतिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए उसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करके स्थापना की जाती है। यदि वह मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक स्थापना नहीं हो, तो वैसे तो हमारे घर में पेंटिंग्स भी होती हैं भगवान की, छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स जैसे आइडल भी होते हैं वो, लेकिन भगवान जैसे पूजनीय नहीं, क्योंकि हमने उनकी स्थापना नहीं करी, उनमें मंत्र से सिद्धि करके भगवान की स्थापना नहीं हुई है, तो विदाउट दैट वो भगवान की मूर्ति नहीं कहलाती, तो उसको हम पूजन नहीं कर सकते। तो हमारे घर में बिल्कुल भगवान की ही मंदिर जैसी प्रतिमा रखी हो, बट यदि उसमें मंत्रोच्चारण वगैरह से यदि उसकी स्थापना नहीं, प्रतिष्ठा नहीं हुई है, तब तक वो उसकी आप पूजन नहीं कर सकते, आप उसको नमस्कार नहीं कर सकते। तो फिर श्वेतांबरों के, तो फिर बात ही अलग हो गई वहां पर तो।
थैंक यू।
और इसमें जो 13 पंथ हम बोलते हैं, एक्चुअली वी हैव टू नो इट वेरी क्लियरली कि 13 पंथ एज इन कोई नई चीज नहीं है, कोई पंथ नहीं है कि हम 13 पंथी हो गए वो 20 पंथी हो गए, ऐसा नहीं। द ओरिजिनल मार्ग, वो ओरिजिनल मार्ग था, उसमें बीच में विद टाइम बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट अशुद्धियां आ गईं, वो अशुद्धियों को फिर हमको, हमें अलग से रूल्स बनाने पड़े कि एक्चुअली भगवान के सामने दीपक नहीं जलाया जाता था, बट फिर उन्होंने दीपक से आरती कराना स्टार्ट कर दिया, तो ना 13 पंथ का रूल होगा कि भाई आप दीपक से आरती मत करना। दैट रूल इट वॉज लाइक वी हैड टू मेक, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू मेक बिकॉज एवरीबडी वॉज बिलीविंग धर्मा इन दैट, तो उसके लिए उसमें से धर्म बुद्धि हटाने के लिए रूल बना। दीज 13 रूल, ये 13 पंथ हम नए के कहलाते हैं, बट ऐसा नहीं कि हम कोई नए पंथ में, 13 पंथ कोई नया पंथ है। तो नाउ हमारे यहाँ 13 पंथ क्यों था? क्योंकि वी हैड 13 कोर्स। तो श्वेतांबरों में व्हाट हैपेंड, अब वहां भी भैया चलो 13 पंथ नया ट्रेंड है, तो उन्होंने 13 पंथ को क्या निकाला, 13 मतलब 13 योर्स, तो हे भगवान आपका पंथ वो 13 पंथ, दिन 13 पंथ विदाउट एंड, वो 13 नथिंग, 13 पंथ मतलब 13 भगवान, 13 पंथ, दे हैड टू मेक समथिंग न्यू। तो उसके आद्य प्रवर्तक आचार्य हुए, उनको समथिंग न्यू निकालना था, तो उन्होंने ही सेड ओके लेट्स डू समथिंग न्यू। तो ही सेड 13 पंथ दिगंबरों में चलता है, हम लोग भी 13 निकालते, तो हमारे पास 13 चीजें तो कुछ है नहीं, 13, देयर इज नो 13 थिंग्स दैट वी हैव, सो लेट्स से 13, 13 मीन्स योर्स, बोलते ना इन हिंदी 13 इज योर्स, राइट। 13 पंथ, हे भगवान एक 13 पंथ ही सच्चा, सो ही मेड अ डिफरेंट सेक्ट। तो अब वो 13 पंथ अलग होते हैं श्वेतांबर में, डेरावासी स्थानक वासी के ही 13 पंथ, ये लोग भी मुख पट्टी लगाते हैं, बट ये लोग स्थानक वासियों से स्लाइटली डिफरेंट है।
तो ये 13 हमारे जो हम 13 पंथी शुद्ध आमनाई वाले हैं, वो 13 कौन से होते, वो क्विकली आप हमें जस्ट क्योंकि दिस इज द
एक्चुअली मैं
फर्स्ट टाइम वैसे आई न्यू बट आई डिडंट नो कि 13 पंथ क्यों बोलते हैं हम शुद्ध आमनाई का, सो आई जस्ट लर्न टुडे
ओके
कि
ओके
ये 13 कोड्स ऐसे के, सो 13 कोड्स कौन, और नेक्स्ट टाइम बताइए कि, और जस्ट ईमेल मी इफ यू कि
नहीं,
अब
मैं बताता
अपनी
हूँ आपको।
आप यू सी के आपका टाइम नहीं बिगाड़ती हूँ।
नहीं, मैंने आपको रूल बुक भेजी है ना,
हाँ, आपने मुझे भेजी है, हाँ वो तो मैंने
तो
सारी पढ़ी
दैट
है।
इज द समरी ऑफ 13 पंथ ओनली, लाइक
ओ
ऑल द,
ओके ओके हाँ,
बट दे आर नॉट 13 इन नंबर बिकॉज उसमें छोटे, उसमें दो तीन हम ग्रुप कर देते हैं, बट आई विल स्टिल टेल यू जस्ट क्विकली, मैं बताता हूँ 13 पंथ में क्या होता है। ओके ये सारे नियम आप लोग देखेंगे,
सबको पता लग ना ये के क्यू
हाँ
के
ऑल दीज नियम्स आप लोग देखेंगे कि ये वाले सारे नियम ओनली रिलेटेड टू टेम्पल ही है, ओनली रिलेटेड टू भगवान ही है, क्योंकि उसी में अशुद्धि आने से हमारा पूरा गड़बड़ स्टार्ट हुई थी। मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ लाइन से, ठीक है। हाँ सबसे पहले अलग अलग दिशाएं होती हैं, तो 10 प्रकार की दिशाएं होती हैं, राइट, ठीक है। पहले तो 4 मेन दिशाएं होती हैं, विथ लाइक ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारी क्या होती हैं, दिशाएं होती हैं, द डायरेक्शन। और फिर इनकी विदिशाएं होती हैं, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये क्या हो गई विदिशाएं, बीच में। तो 4 + 4 8, ओके। और एक अप और एक डाउन, ऊपर का एंड नीचे का, तो ऐसे करके 8 + 2 10, ये 10 दिशाएं होती हैं, ठीक है, 10 डायरेक्शंस, ओके। अब ऐसा बोला जाता है हर एक दिशा में, जैसे हमारी विसिनिटी है, वी आर लिविंग हियर, राइट, तो हर एक दिशा में एक पर्टिकुलर एरिया पर उधर के रक्षक देव होते हैं, उनको बोलते दिक्पाल, ठीक है। तो नाउ जैसे धर्म पद्मावती धर्मेंद्र को मानते हैं, ऐसे इन दिक्पालों को भी पूजन स्टार्ट हो गई थी, भट्टारकों ने इनकी भी पूजन स्टार्ट करा दी थी, राइट। विदिशा विदिशा दिक्पालों को नहीं मानना, दैट्स द फर्स्ट, लाइक हमें अकेली 5 परमेष्ठी पूज्य हैं, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इन 5 के अलावा एक जिनवाणी पूज्य है, इनके अलावा और किसी की पूजन नहीं होती। दिक्पाल तो फिर देव हैं, वो भी बहुत नीची जाति के, सम्यक दृष्टि जीवों का उनके जातियों में जन्म नहीं होता, तो उनकी पूजा उनको नहीं मानना, उनको मानने ही नहीं कि वो कुछ हैं, हमारे जैसे हैं वो नॉर्मल, ठीक है। दैट्स द फर्स्ट रूल, ठीक है। तो जो हीन जाति के देव है उनको नहीं मानना, सिंपल। सेकेंड रूल, भट्टारकों को गुरु नहीं मानना, भट्टारक अपने आप को साधु परमेष्ठी बोलने लगे थे कपड़े पहनकर, और वो धर्म के नायक हो गए थे और अभी भी हैं, आप पीछे श्रवण बेलगोला वगैरह जाएंगे वहां पर पूरा कंट्रोल इज इन हैंड ऑफ भट्टारक ओनली। आप लोगों को शायद पता हो साउथ में जब भी आप जाएंगे तो साउथ में अभी भी भट्टारकों का ही कंट्रोल चलता है, उनके वो ही सारे ट्रस्ट के अध्यक्ष होते हैं, उनकी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। भट्टारकों को गुरु नहीं मानना, दैट वॉज द सेकेंड रूल। थर्ड, भगवान के चरणों में चंदन और केसर का लेप नहीं करना, जो भगवान के अंगूठे में हम चंदन केसर लगा देते हैं, तो ये भट्टारकों उसी टाइम स्टार्ट हुई 20 पंथ आमनाएं में, दैट वॉज द थर्ड रूल, ये हमको नहीं करना। सचित्र फूल भगवान को नहीं चढ़ाना, भगवान को फूल फल नहीं चढ़ाने, ये पहले नहीं होता था फिर होने लगा था, तो इसलिए इसको इसको बंद कराने के लिए रूल बना। फिफ्थ, दीपक से पूजन नहीं करनी मंदिर में। दीपक पहले स्वयं ही वो अग्नि का है, एक इंद्रिय जीव है, ऊपर से उसमें छोटे छोटे जीव, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री जीवों की हिंसा होती है, उससे भगवान की पूजन नहीं करना। आशिका नहीं लेना, फिर दीपक जलाते थे और दीपक जलाकर फिर उसकी जो लौ होती है उसको फिर अपने सिर पर लगाते थे, मतलब जैसे गंधोदक लगाते ना ऐसे ऊपर दीपक के ऊपर हाथ लगाकर। तो क्या मतलब है इसका, इससे क्या हो रहा, आशिका लेके आप क्या कर रहे हो? तो जो हिंसा की सामग्री है उसको यदि आप धारण कर रहे हो तो आप हिंसा में अनुमोदना कर रहे हो। तो ये दीपक की आशिका, भगवान की आशिका नहीं लेना। जब भगवान की पूजन हो जाती है तो उनकी द्रव्य की थाली के ऊपर हम ऐसे करके आशिका लेने की कोशिश करते हैं, स्थापना करते हैं ऐसे, तो वो नहीं करना। भगवान को फूल और उसकी मालाएं नहीं चढ़ाना। पंचामृत अभिषेक नहीं करना। दूध, दही, घी, और पानी और रस, इनसे पंचामृत अभिषेक भगवान का होता है, ये नहीं करना चाहिए। ये क्यों होता था कि बीच में जब बहुत मुगल सम्राट थे तो अपने मंदिरों को तोड़ा जाता था, तो अपनी सारी मूर्तियों को जमीन के अंदर छुपा दिया गया था जिससे वो तोड़ी नहीं जाए। लेकिन अब लोग रोज दर्शन तो करेंगे तो कैसे दर्शन करें, और इतनी बड़ी बड़ी पीतल की मूर्ति होती थी वो भारी होती थी, पत्थर की मूर्ति होती थी वो पोर्टेबल नहीं होती थी, तो फिर लोगों ने दर्शन के लिए लकड़ी की मूर्तियां बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती थी, वो पोर्टेबल भी होती थी, तो उनको अपने घर में कबर्ड में छिपा देते थे, अच्छी सी एक डेडिकेटेड कबर्ड होती थी, और रोज सुबह उसको निकालते थे, उसका प्रक्षाल करते थे। अब जो लकड़ी की मूर्ति है उसमें आप पानी डालोगे तो लकड़ी खराब हो जाती है, राइट? वाटर से वुड खराब होता है ना। तो फिर उसका प्रोसेस था कि आप यदि उसको तेल से, घी से, कर्ड से यदि धोगे और उसके बाद वाटर लगाते हैं तो वो खराब नहीं होती है, पूरा प्रोसेस होता है उसका, लकड़ी खराब ऐसे नहीं होती है, पॉलिश हो जाती है उसमें। तो उस टाइम पर उन लकड़ी की मूर्तियों के लिए मजबूरी के कारण ये करना पड़ता था। तो पहले कुछ एक एक चीज लगाते होंगे, धीरे धीरे वो फैशन बन गया तो लोगों ने बोला नहीं नहीं पांचों चीजें डालनी पड़ती होंगी, फिर धीरे धीरे बन गई कि अब वो पीतल की मूर्तियों को भी, पत्थर की मूर्तियों का भी पंचामृत अभिषेक करने लगे। अब थोड़े टाइम बाद मुगल लोगों ने परेशान करना बंद कर दिया तो मंदिर फिर बनने लगे, तो लकड़ी की मूर्तियां बंद हो गई। तो लकड़ी की मूर्तियां तो बंद हो गई बट इन चीजों से भगवान के प्रक्षाल करने की आदत लोगों की नहीं छूटी, तो ये नई चीजें निकल आई। फिर इससे बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब अब वो आप कर्ड से भगवान को या घी से आप करोगे तो वो फिर पूरा घी उनके ऊपर जाएगा, वो खाएगा तो कोई नहीं, आप उसको फेंकोगे, फेंकोगे तो आप खुद ही देखो कि कर्ड को यदि आप फेंकोगे तो उसमें कितने जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसके लिए पानी को तो हम जैसे वाटर प्लांट्स को वाटर कर देते हैं, पूरा गंधोदक अपन प्लांट को चढ़ा देते हैं उसमें कर देते हैं, उसमें जीव उत्पन्न नहीं हो पाते। अब तेल का, घी का हम क्या करेंगे, तो उसमें बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए पंचामृत अभिषेक को। घरों में मंदिर भी तभी से स्टार्ट हुए, अब सब घर में रखते थे वो मजबूरी थी, उसके बाद अब बाहर बनने लगे, लोगों ने नहीं नहीं हम तो घर में ही करेंगे, सही है। तो अभी भी साउथ में कई लोगों के घरों में मंदिर होते हैं, मंदिर घर में नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत घर बहुत अशुद्ध होता है, हमारे वहीं पर ही हम नहाते हैं, धोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एवरीथिंग शुद्ध अशुद्ध सारे अच्छे बुरे काम हम घर में करते हैं, वहां पर वितरागी भगवान का मंदिर नहीं हो सकता। वो एक टाइम था उस द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, वहां पर उन लोगों की मजबूरी थी तो ये वाला काम हुआ, बट अब उसको, अब जब वो मजबूरी नहीं है तब कंटिन्यू करना दिस इज नॉट गुड। तो इसके लिए नियम बनाया पंचामृत अभिषेक नहीं करना, ठीक है। फिर उन्होंने, भट्टारकों ने और अभी 20 पंथी वालों ने क्या स्टार्ट किया, वो लोग रात में रात्रि जागरण का काम रखते हैं, ओके, महावीर जयंती वगैरह में, और रात में पूजन करते हैं भगवान की। अब पूजन में भगवान को क्या क्या चढ़ाते हैं हम, जल चंदन अक्षत दीप धूप ये सब। आप रात को पूजन करोगे तो आपको तो फल भी चढ़ाने हैं, फूल भी चढ़ाने हैं, सब कुछ चढ़ा रहे हो आप, यानी कि जो 20-25 लोग हैं, तो खुद तो रात में नहीं खाते हो, खुद तो रात्रि भोजन का त्याग है, एंड रात में भगवान को आप ये ऑफर कर रहे हो सब कुछ। हाउ हाउ कम इट इज लॉजिकल। तो फिर रात में पूजन करना इसका भी, तो ये 9th नियम हो गया, रात में पूजन नहीं करना। 10th, शासन देवी को नहीं पूजना। अपन इतनी सारी कहानियां पढ़ते हैं चंदन बाला की, अनंसरा की, इन सब के शील पर जब जब आक्रमण हुआ तो कोई वन देवी प्रकट हो जाती थी, है ना, उनको बचाने के लिए कोई नाग देवता प्रकट, वन देवता प्रकट हो जाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया यार, ये देवी लोग बहुत अच्छी हैं, ये लोग हमारी रक्षा करेंगी, या फिर जो शासन की देवी है, मतलब जैन धर्म की कोई रक्षा करने वाली देवी लोग होती हैं, जैन शासन की रक्षा करेंगी, चलो हम उनको भी नमस्कार करेंगे। अरे भाई जैन दर्शन तो अनादि अनंत है, उसकी रक्षा करने के लिए कोई मिथ्या दृष्टि देव कहाँ से केपेबल है। तो फिर इस शासन देवी को पूजना ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, इनको नहीं पूजना, इनकी भी पूजा स्टार्ट हो जाती है। तो आप 20-25 मंदिरों में जाओगे तो बाहर एक तो आपको क्षेत्रपाल मिलते हैं, एक पद्मावती मिलती है, एक धर्णेंद्र मिलते हैं, और कहीं कहीं शासन देवी भी मिलती है, ठीक है। ये लोग उनकी पूजन करते हैं, क्यों, क्योंकि वो उस मंदिर की रक्षा कर रही है। रक्षा करनी है तो आप कभी अपने सिक्योरिटी गार्ड की पूजन करते हो क्या, क्योंकि वो आपके घर की रक्षा कर रहा है, कि उसको टिप दे के जाते हो बाद में, उसको सैलरी मिलती है। सो दीज आर जस्ट लाइक दे आर सर्विंग, जैसे कि हमें भगवान की महिमा है, ऐसे इनको भगवान अच्छे लगते हैं, तो ये भी तो हमारे जैसे भगवान को मानने वाले हैं, तो ये पूज्य कहाँ से हुए। तो शासन देवी को नहीं पूजना चाहिए। गंदा अन्न भगवान को नहीं चढ़ाना। गंदा गंदा मतलब बिना शोधा। अब हम भगवान को चावल चढ़ाते हैं, सूखे चावल, अब कोई घर से राइस बनाकर ही ले जाए पका हुआ और भगवान को चढ़ा दे, तो उस राइस में जीव पड़ेंगे थोड़े टाइम बाद, क्योंकि तो आपका भी सुबह का खाना रात तक खराब हो जाता है यदि आप उसको फ्रिज में नहीं रखो तो, राइट, कल खराब होगा, परसों खराब होगा, बट अल्टीमेटली हो जाता है। एक मर्यादा होती है हर एक चीज की, जैसे कि राइस हुआ, इन सब में, जैसे कि यदि बॉइल्ड वाटर से ये सब बने हैं तो बॉइल्ड वाटर की है 24 आवर्स की मर्यादा, तो आफ्टर 24 आवर्स इट इज नॉट इवन टचेबल, वो छू भी नहीं सकते हैं। यदि बॉइल्ड वाटर नहीं है तो फिर 6 आवर्स 8 आवर्स के बाद वो सब्जी खराब होने लगती है हमारी, तो उसके बाद उसमें जीव पड़ने लगते हैं। दैट्स वाई जिस भी जिसका टेस्ट खराब हो जाता है हम उसको नहीं खाते हैं। वो टेस्ट खराब क्यों होता है, क्योंकि उसे बहुत सारी बैक्टीरियल फॉर्मेशन हो जाती है, बैक्टीरियल फॉर्मेशन के साथ साथ त्रस जीवों की भी उसमें उत्पत्ति होने लगती है। तो इट्स नॉट लाइक जिसका टेस्ट खराब है हम उसको छूते भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सचित्त अन्न को, सचित्त खाने को भगवान को हम ऑफर नहीं कर सकते। हम अकेली सूखा हुआ नारियल, सूखी हुई बादाम, लौंग और चंदन और अक्षत, ये सारी चीजें ही भगवान को चढ़ाते हैं। नेक्स्ट 12th रूल इज हरे फलों को नहीं चढ़ाना। लाइक जो कुछ भी फल अलग अलग होते हैं, एप्पल हुआ, केला हुआ, ये सब भगवान को चढ़ाने के लिए लोग लेके आते हैं, दिस इज नॉट अलाउड, हरे फलों को नहीं चढ़ाना। 13 इज बैठकर पूजन नहीं करना। बैठकर जैन दर्शन में पूजन नहीं की जाती। एक जगह तो आप बोलोगे काय उत्सर्ग हमारा एक तप है, हमको तप करना चाहिए, शरीर हमारा नहीं है, और दूसरी जगह आप 20 मिनट्स तक खड़े भी नहीं हो पा रहे हो पूजन के लिए, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम देन। मतलब हम इतने सुकुमाल हो गए कि हम 20 मिनट तक खड़े भी नहीं रह पाए भगवान की पूजन के लिए। इट इज अ रिस्पेक्ट खड़े होकर पूजन करना। तो जिनकी शक्ति नहीं हो, जिनसे नहीं बने, वो ही बैठकर पूजन करें, बाकी पूजन खड़े होकर ही की जाती है। इन 13 पंथ आमनाएं
जो भाव पूजा करते हैं तो वो तो बैठकर कर सकते हैं ना।
एक्चुअली जो भी पूजन कर रहे हैं, भाव पूजा है द्रव्य पूजा, दोनों आइडियली खड़े होकर करनी चाहिए,
ओके।
आइडियली,
हम
बस
तो
यदि नहीं है तो इसमें कोई ज्यादा खींचतान नहीं है। बट जैसे कि यदि कोई यंग है, जैसे कि हम लोग ही बस खड़े बैठ कर तुरंत बैठ जाए, बस हम लोग ने विनय पाठ पढ़ा, पूजा पीठिका पढ़ी और अब थक गए बैठ गए, तो यदि वही वाली बात जॉगिंग करने को होती है जिम में, तो हम आधा घंटे तक उसमें वॉक कर लेंगे, जिम के लिए घूम लेंगे, बट भगवान के सामने हम इतनी जल्दी क्यों थक जाते हैं। सो दैट वे इसको एक कायस्थर भी कहते, कायस्थर का भी एक वो उसमें प्रैक्टिस हो जाती है। तो इट्स अ रिस्पेक्ट टू वर्ड्स भगवान, तो हमको खड़े होकर पूजन करनी चाहिए, बैठकर नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि किताब हाथ में होती है तो नीचे टेबल पर रखनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा वैसा
हाँ, वो फिर सिचुएशंस के हिसाब से देख लीजिए, बट जिनकी शक्ति हो उनको तो खड़े होकर ही करना चाहिए।
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू सो मच.
तो बैठकर पूजन नहीं करना, खड़े होकर ही करना, ये 13 नियम होते हैं 13 पंथ के। तो इनमें से एक भी नियम ऐसा नहीं है कि भैया तुम तो सिर्फ वीतरागी देवशास गुरु को ही मानो और ये करो और वो करो। ऑल द नियम्स आर इन नेगेटिव, कि ये मत चढ़ाओ, खड़े हो बैठकर पूजन मत करो, शासन देवी को मत पूजो। तो नेगेटिव कब आते हैं, जब कुछ रूढ़ी से इम्प्योरिटीज आ जाए तब हमको बोलना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करो। तो 13 पंथ कोई नया निकला नहीं है, ऑलरेडी देर वर सेट ऑफ रूल्स, पीपल वॉयलेटेड दोज रूल्स, सो वी री इंस्टेटेड दोज रूल्स, तो उनको वापस हमको रीइंस्टेट करना पड़ा। तो इसके लिए 13 पंथ कोई नया नहीं चला, ऑलरेडी जो रूल्स थे अंडरस्टूड वो इतने अंडरस्टूड नहीं रहे, तो लोगों को अब एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ा कि यू आर नॉट अलाउड टू डू दीज पर्टिकुलर 13 थिंग्स इनसाइड द टेम्पल। सो ऑल दीज 13 थिंग्स, डूइंग दीज 13 थिंग्स विच आर नॉट अलाउड ओवर हियर, उनको करने से ग्रहित मिथ्यात्वता बंद होता है, क्योंकि आप देवशास गुरु की अभिनय कर रहे हो। अब भगवान अहिंसा का उपदेश देने वाले हैं, सबसे बड़े देव हैं अहिंसा को बताने वाले, ऐसी अहिंसा किसी और भगवान ने बताई नहीं। अब उन अहिंसा के उपदेश देने वाले भगवान के हम पूजन दीपक जलाकर कर रहे हैं, इजंट इट? वो बोल रहे हैं जीवों की हिंसा नहीं करो, हम भगवान, भगवान आपने अहिंसा का बहुत अच्छा मार्ग बनाया, लो हम दीपक जलाकर आपके पूजन करते हैं। तो अहिंसा का जो उपदेश दे रहे हैं हम उनकी पूजन हिंसा करके करें, इज इट अ पेइंग रिस्पेक्ट टू दैट भगवान, और इट्स अ पूरा का पूरा उनका पूरी की पूरी अभिनय ही है। तो ये सारी चीजें सच्ची आमनाए में विरुद्ध बातें लाने के लिए, उनके निषेध के लिए कही जाती हैं। अपना ऐसा नहीं मानना कि हम 13 पंथ वाले, हम 20 पंथ वाले, नहीं, नो, हमारा इंट्रोडक्शन इज नॉट बाय 13 पंथ और 20 पंथ, हमारा इंट्रोडक्शन इज वी आर दिगंबर जैन कुंद को नामनाए वाले जीव, शुद्ध दिगंबर जैन, जो एक्चुअली मूल आमना है, तीर्थंकर महावीर की परंपरा है। दैट्स द ओनली ट्रू जैनिज्म, एक वो ही वे ऑफ लिबरेशन है। उसमें ओवर द टाइम कुछ गलत गलत बातें आ गई हैं, उनको हमें 13 कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा अलग करते हैं एक्सप्लिसिटली। सो वी एक्सेप्ट द 13 नॉर्म्स दैट आर लेड डाउन, वी फॉलो देम। दैट डजेंट मीन कि 13 पंथ को एक नया धर्म है हम जिसको मानते हैं, नो, धर्म तो एक मूल दिगंबर जैन धर्म ही है। उसमें कुछ लोग हैं जो 13 रूल्स को फॉलो नहीं करते, कुछ लोग फॉलो करते हैं। 13 रूल्स को फॉलो करना, दैट सपोर्ट, मतलब वो हमारी मूल आमनाएं को जीवित रखता है, इसके लिए हम लोग 13 पंथी कहलाते हैं। बट वी आर नॉट 13 पंथी, वी आर मूल दिगंबर, हम लोग दिगंबर आमनाएं वाले, उसमें कोई भेद नहीं है। एक्चुअली दिगंबर भी नहीं कहना चाहिए, जैन आमनाएं ही एक दिगंबर ही थी, श्वेतांबर तो उसमें एक नया पार्ट बना भद्रबाहु मुनिराज के टाइम, तो हमको दिगंबर श्वेतांबर दो सेक्ट करने पड़े, बट मूल जैन धर्म तो ये जो अभी हम मान रहे हैं ये ही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बाकी सब अजैन, कुदेव कुगुरु कुधर्म में आ जाएगा, बाकी सब का सब। ये वाली बातें यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली है, ठीक है?
थैंक यू
तो कुछ लोग
बहुत।
ऐसा बोलते हैं कि मतलब आप भगवान के सामने चले जाओ किसी भी, और अपने भगवान को याद करो, आप उनको याद नहीं करो।
हाँ, वो ही बोलते थे कि बस अपने भगवान अपने मन में कर कर फिर
हाँ,
वहां
अपने मन
कर
में याद
लो तो
करो, आप इनके सामने आए हो, अपने मन में याद
नो
करो, तो
राइट नो।
जस्ट टेल हिम कि लाइक यू लाइक गो टू अ लिकर बार, आप जाओ शराब की दुकान पर और आप तो बस अपने शुद्ध जल छने हुए पानी को याद करो। लाइक हम भाई, वी आर गोइंग टू अ बार, क्यों जा रहे हो? हम वहां पर कुछ करते थोड़ी है, हम तो बस पानी को ही याद करते हैं, एंड वी ओनली हैव वाटर ओनली। जब आपको पानी ही लेना है तो उस बार में क्यों जा रहे हो? व्हाई द, व्हाट इज द पर्पज? डोंट गो ना।
मैंने बस वो ही उनको बोला, मैंने बोला मत जाओ। तो फिर
वाई टू गो, यदि तुमको वहां पर जाकर नमस्कार नहीं करना, मन में ही सोचना है, तो इतनी मेहनत क्यों दे रहे हो मन को? सीधे वही वाले मंदिर में जाओ ना, जब मन में नहीं सामने ही दिखे भगवान, राइट? सो वी शुड जस्ट लाइक वी लाइक जस्ट लाइक वी डू नॉट ईट इन द रेस्टोरेंट इन विच नॉन वेज फूड इज प्रिपेयर्ड, फॉर द सिंपल रीजन दैट दैट प्लेस इज नॉट वर्थ ईटिंग। इट्स नॉट लाइक वहां पर हम एक जगह वेजिटेरियनिज्म का डंका बोले और एक जगह हम उसी प्लेट पे खाए जिसपे कल किसी ने कोई फ्राइड फिश खाई होगी, दैट डजंट साउंड गुड, राइट? सिमिलरली एक ही जगह पर जैसे नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन फूड को हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सेम वे इन वन प्लेस हम वीतरागता और सरागता को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट्स सेम, इट्स इक्वल, जस्ट लाइक वी डू नॉट एंटर इन द प्लेस वेयर वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन फूड बोथ आर प्रिपेयर्ड, नो मैटर किचन इज डिफरेंट, वी डू नॉट ईट, आइडियली वी शुड नॉट। सिमिलर वे इट्स सेम, रागी भगवान एंड वीतरागी भगवान जहाँ एक साथ बैठे हो वहां पर वी शुड नॉट गो। दैट ऐसा है, ठीक है?
अंजू जी,
हाँ जी,
अंजू जी, क्वेश्चन यह है कि बहुत बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि अपने दिगंबर के भी मंदिर है,
हाँ वो श्वेतांबर के
था, हाँ मतलब बहुत मतलब यू नो अन्य प्रांतों के भी लोग आते हैं, तो कोई आके कभी कभी वो मतलब यू नो फूल वगैरह चढ़ा देते हैं भगवान की प्रतिमा के सामने। तो हम जब दर्शन करने जाते हैं तब हम देखे कि ये मतलब यू नो फूल वहाँ है, तो क्या पहला क्वेश्चन ये कि क्या हमको वो दर्शन करना चाहिए या
हम दर्शन करें भगवान की प्रतिमा के ऊपर फूल चढ़ा देते हैं कि उनके पास में रखते हैं कि प्रतिमा के ऊपर ही रख देते हैं?
वो मतलब प्रतिमा है जैसे बिनो हाथ है या पैर है, हाँ, तो वहाँ पैरों के ऊपर या हाथों के ऊपर रख देते हैं,
हाँ, और अपना मंदिर मूल दिगंबर है, राइट?
हाँ जी,
तो वहाँ पर आप मतलब कैन यू नॉट से कि इसको हटा दें या हटवा सकते हो या कुछ कर सकते हो, इज इट नॉट पॉसिबल? लाइक हम लोगों के मंदिरों में जैसे कि वो पुजारी जो रहते हैं ही इज ऑलवेज प्रेजेंट, तो वी लाइक ऐसा कोई कर जाए तो हम लोग तुरंत हटवाते हैं पुजारी, बट ऐसा होता नहीं इंडिया में इतना। बट सी ये वाले सारे उपदेश द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से
यहाँ सब आते हैं ना, तो कोई मैंने भी एक दफा दौड़कर उसको बोला कि आप फूल नहीं चढ़ा, वो लेकर आए।
तो देखिए ये वाली बात हमको यहाँ पर ऐसा समझना है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोगों ने घर में मंदिर भी बनाने स्टार्ट किए, लकड़ी की प्रतिमाएं भी रखी, तो देट वॉज दिस सिचुएशन। सिमिलरली आप लोगों की सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट, वी कैन नॉट कंपेयर इट विद द सिचुएशन इन इंडिया, राइट? इट वुड बी लाइक नॉट लॉजिकल टू ट्रीट बोथ द सिचुएशन सेम। तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते वहां पर। तो सी यदि वो दिगंबर आमनाय का मंदिर है, ठीक है, और फिर यदि कोई गलती से वहां पर पुष्पहार रख गया है, तो यदि आप उसको हटवा सकते हैं तो पुजारी से बोलकर हटवाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, इट्स योर सिचुएशन, आपका वश नहीं चलता। अब आपका खुद का मंदिर होता तो आप हटा लेते, या फिर आप धोती दुपट्टे पहन के खुद हटा लीजिए, नहीं तो फिर मतलब दर्शन तो फिर आप करेंगे इतनी दूर से आए हैं, ठीक है? बट यू शुड नो, यू शुड बी नोन, लाइक ये सेम थिंग डजंट गो कि जहां पर भगवान पर रोज चढ़ते ही है फूल वहां पर आप दर्शन करने नहीं जा सकते। जहां पर किसी ने गलती से चढ़ा दिए हैं वहां पर ठीक है,
ओके।
ये मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से हमको सोचना पड़ेगा इसमें, नहीं तो लोग फिर मंदिर ही जाना छोड़ दे रहे, नहीं आ रहे, यहाँ तो कोई मंदिर ही नहीं है, भाई मंदिर तो जाओ, ऐसा नहीं करो। बट यस, वो वाले मंदिर नहीं जाओ जहाँ पर भैया यही कायदा है कि यहाँ भगवान को भैया चंदन लगते ही है, भगवान को फूल चढ़ते हैं। हाँ, आज ये वाले भगवान पर कोई गलती से चढ़ा गया है तो इधर यदि हम लोग धोती दुपट्टे शुद्ध वस्त्र पहने तो हम हटा कर फिर भगवान का चरण छू लें, भगवान के प्रक्षाल कर लें, जो भी कर लें, और नहीं तो फिर यदि कोई वहाँ पर है जो शुद्ध कपड़े पहना है उससे हटवा कर दर्शन करें, और यदि वो पॉसिबल नहीं है तो फिर आप क्या करें, तो भगवान के वैसे ही दर्शन करें। बट इन एनी केस भगवान का स्वरूप वैसा नहीं होता जैसा कि वो दिख रहा है उस टाइम, तो वो स्वरूप स्मृति में होना चाहिए, ठीक है? इन सब में मतलब ज्यादा खींचातानी कभी भी मत करिएगा, ठीक है? ये सारे रूल्स ऑल लाइक जो इंडिया में अप्लाई है वो जरूरी नहीं यूएस में अप्लाई हो सके, राइट? तो इसके लिए बस ये समझना कि आइडियली क्या होना चाहिए और इस सिचुएशन में बेस्ट क्या हो सकता है, ये दोनों का ज्ञान बस होना चाहिए हमको।
नहीं, एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए ना कि
हाँ
क्या है, क्योंकि
वही वही वही,
हमें
यदि पता नहीं
तेरापंथी
हो
का वैसे पता था
हाँ
कि हम शुद्ध आमनाई तेरापंथी है, मगर तेरापंथी क्यों बोला जाता है वो आपने आज समझा है, मुझे तो आज ही पता लगा, दूसरों को
इसके
आके पता था कि नहीं थे।
लिए मतलब तो इनमें इसलिए बट हमारा मूल हम लोग मतलब दिगंबर और श्वेतांबर जैन दर्शन में ऐसे भी कोई भेद नहीं है, वो ओवर द टाइम दे हैव कम, तो ऐसी तेरापन दरवीसपन तो बहुत ज्यादा बाहर की बात है। तो वी आर ओनली फॉलोइंग 13 कोड्स ऑफ कंडक्ट, दैट्स वाई वी आर कॉल्ड तेरापंथी, अदरवाइज ना तो हम सोनगढ़ी हैं ना तेरापंथी हैं ना दिगंबर है, वी आर जस्ट जो जिनेंद्र देव को माने वो जैन। तो हम जिनेंद्र देव को मानते हैं, वो कैसे हैं वीतरागी सर्वज्ञ है, हम उनको मानते हैं, उनकी आमनाई को मानते हैं, हमारा वो पंथ है, ठीक है? नहीं तो गुरुश्री जैन धर्म कोई पंथ नहीं, वाड़ा नहीं, संप्रदाय नहीं, ऐसे ही बोलते ना गुरुदेवश्री बार बार। जैन दर्शन कोई ऐसा दिगंबर श्वेतांबर ये कोई पंथ जैन दर्शन में ऐसा कुछ नहीं। जैन दर्शन तो जो जहाँ पर मूल शुद्ध आत्मा की, शुद्ध वितरागी देव की, आत्मा के शुद्ध स्वभाव की जैसी बात है, उसका जैसा आचरण है जहाँ पर वो बताया जाए, वो सब जैन धर्म है, ये वाली बात है वहां पर, ठीक है? बट ये मंदिर वगैरह के संबंध में बहुत मतलब हम प्रथमान युग को पढ़ते थे तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग देखने को मिलते हैं कि क्या इतिहास में क्या क्या नहीं हुआ। जैसे कि मंदिरों के छोटे गेट होते हैं यहाँ पर, राइट? पुराने जो मंदिर देखोगे उसमें बहुत छोटे गेट होते हैं। तो व्हाट यूज्ड टू हैपन कि मैं आप शायद आप लोग को बता चुका हूँ, क्या होता था कि जो मुगल राजा आते थे वो लोग घोड़े पर ही चढ़कर आते थे और आते थे मंदिर में, एंटर करते थे, इतने बड़े बड़े गेट होते थे, दे यूज टू एंटर बिना उतरे ही और आकर तलवार से सीधी प्रतिमा का गर्रा काटा और वापस चले गए विदाउट। तो लाइक उनकी एंट्री थोड़ी तो मतलब लाइक हम लोग को कुछ तो प्रिपेयर होने का टाइम मिले, तो गेट छोटे बनाए जाने लगे जिससे एंट्री रिस्ट्रिक्टेड हो, आने वाले को पहले उतरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, फिर वो एंटर होगा। क्योंकि पहले के लोगों की हाइट तो हम लोगों से बहुत ज्यादा होती थी, हाइट तो बाय डे कम होती जा रही है, तो उनकी हाइट ज्यादा होती थी। बट वी हैव सीन 1500 1000 ईयर्स ओल्ड टेम्पल, दे हैव छोटा छोटा गेट्स, जो पेंटिंग्स भी बनी है भद्रबाहु मुनिराज के समय की इन श्रवण बिलगोला, उसमें भी मंदिर मतलब उस टाइम के भी जो है छोटे छोटे, बीच के टाइम के 600 700 ईयर्स ओल्ड जो टेम्पल्स हैं इन सबको छोटे छोटे गेट्स हैं। तो ये सब देश काल के हिसाब से अलग अलग काम होते आए हैं, इसलिए हमको उसको नहीं भूलना चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। एवरी रूल विल नॉट बी अप्लाइड इन द सेम फैशन एज इट वुड हैव बीन इन अदर सिचुएशन, ठीक है? अब थोड़ी इसकी देवों की कुदेवों की हम कर्मों के हिसाब से बात कर लें कि देखिए देव पूजा इज हमारा एक आवश्यक है षट आवश्यकों में से, ठीक है? इट्स अ कंपल्सरी, एवरी जेंट शुड डू देव दर्शन डेली, दैट्स अ रूल। अब इट्स नॉट पॉसिबल देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। अब यदि कोई श्रीनगर में पहुंच गया, कश्मीर में रहना पड़ रहा है उसको बिकॉज ऑफ जॉब, वहां पर कोई टेम्पल ही नहीं है, आप जहाँ पर यूएस में रह रहे हो वहां पर आसपास कोई टेम्पल नहीं हो, इट्स ओके। अब जिसको जिसकी ताकत नहीं है, जिसके पास टाइम नहीं, कैन नॉट गो। बट वेन एवर लाइक जिसके घर के सामने ही टेम्पल है, इट्स फॉर हिम दैट भी रोज भगवान के दर्शन तो होने ही चाहिए, ठीक है? अब क्यों होने चाहिए, हमने पिछली बार देखा था भगवान के दर्शन करने से जन्म जन्म कृतम पापम जन्म कोटि मुपार्जितम जन्म मृत्यु जरा रोगम हन्यते जिन दर्शनात्। भगवान के दर्शन से जन्म जन्मांतरों में किए गए पाप जो कि कई जन्मों में किए गए हैं, रोग, बहुत सारी आपदाएं विपत्तियां, इन सब के उदय ये हीन होते जाते हैं। भगवान का ऐसा सहज अतिशय है ही, उनके दर्शन का ये चमत्कार है ही। यहाँ पर ये नहीं बता रहे कि हमको इन पाप के उदय से कुछ दुख है और पुण्य के उदय से कुछ सुख होगा, बट इट्स अ ऑटोमेटिक साइंस, इंजीनियरिंग यही है कि आप उनके सामने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके कर्मों में कुछ होना है। आप बोलो कि नहीं 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 मुझे भगवान के दर्शन करके कोई पुण्य नहीं कमाना है, कोई पाप को दूर नहीं करना है, आई एम गुड विद दिस, आप ऐसा कह सकते हो, बट इट्स नॉट इन योर हैंड. वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है. कर्म पाप कर्मों की निर्जरा होती ही है, पुण्य कर्मों का तीव्र बंध होता ही है भगवान के सामने. इट्स नॉट इन योर हैंड्स, वो आपके हाथ में नहीं है. ठीक है, जैसे कि आग के पास जाने से आपको उष्णता मिलती ही है. आप नहीं नहीं मैं आग के पास भैया किसी प्रयोजन से थोड़ी जा रहा हूं, मुझे वो नहीं चाहिए. जैसे कि चंदन के जंगलों में जाने पर सुगंधित आपको अच्छी खुशबू अच्छी सुगंध मिलती ही है. यू कैन नॉट लाइक अरे नहीं मुझको ये नहीं चाहिए था, मैं तो ऐसे ही आया था आपसे मिलने के लिए. नो, इट्स नॉट पॉसिबल, यू कैन नॉट स्टॉप इट. सिमिलर वे भगवान के सामने जाने से पुण्य बंध होता ही है, आपको चाहिए हो या नहीं चाहिए हो. इट हैपेंस. अरे इतना ज्यादा है कि देखो वो रामचंद्र और सीता मुनिराज को जंगल में आहार दे रहे हैं, ओके, और ऊपर एक पक्षी बैठा हुआ है पेड़ पर, और उसको मुनिराज को देखकर ऐसा भाव आता है कि यार ये राम और सीता लोग कितने अच्छे हैं, काश यदि मैं इनके जैसा होता तो मैं भी आहार दे पाता. एक्चुअली वो गिद्ध पंक्षी पता है कौन है? आप लोगों ने सुना होगा ना कि 500 मुनिराजों को घानी में पेल दिया था, आपको स्टोरी पता है वाली?
सुना है,
मैंने सुनाई थी एक बार लॉन्ग बैक. देखिए मैं बताता हूँ वापस क्या हुआ. एक राजा था, वो बहुत बड़ा जिनधर्मी था, ठीक है, वो जिनधर्मी था बहुत बड़ा. अब उसके घर के पास जहाँ पर राजा रहता था वहां पर दंडक वन था, दंडक नगर था, दंडक नगर का राजा था, उसके बाहर था दंडक वन, ठीक है. वो जैन दर्शन का बहुत बड़ा अनुयायी था, बहुत एकदम सम्यक प्रकार से मानता था, ठीक है. अब वहां पर 500 मुनिराजों का संघ आया, ठीक है, उसने पूजन करी भक्ति करी बहुत कुछ किया. अब वहां पर कुछ जीव जिन दर्शन से जलन करते थे, उनको बिल्कुल नहीं पसंद था. तो उन्होंने बोला कि नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता, महाराज को जैन दर्शन के विरोध में भड़काना पड़ेगा. तो उनमें से एक ने क्या किया, उन्होंने एक आदमी को हायर किया, उसके कपड़े उतरवाए, ठीक है, उसको मतलब नग्न बनाया, और उसको रात के दिन रानी के महल में भेज दिया, ठीक है. रानी वो प्रेग्नेंट थी, उसने रात में अचानक से देखा तो वो डर गई एकदम से, ठीक है, वो डर गई और उसके जो गर्भ था वो चला गया, ठीक है. राजा को सुबह पता पड़ा, उसने बोला जैन मुनिराज रात में, जैन मुनिराज ऐसे व्यभिचारी तो नहीं होते. उसको बहुत गुस्सा आया कि जरूर ये 500 मुनिराज हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग जैन नहीं है. और उसने 500 के 500 मुनिराजों को डेथ की पनिशमेंट दी, मतलब इन सबको मार डालो. कैसे मार डालो? आपने कभी वो देखा है, घानी को देखा है, जो गन्ना गन्ना होता है ना शुगर केन, उसका रस निकालते हैं, तो उसको रस निकालने वाली मशीन आपने देखी है?
हाँ,
देखिए, ठीक है, उसमें गन्ने को डालते जाते हैं और वो वहां पर दो उसके वो राउंड राउंड घूमते रहते हैं, दो उनके बीचों बीच गन्ना जाके पूरा का पूरा उसका रस निकल जाता है, राइट. इसको बोलते हैं घानी. इसमें मुनिराजों को ऐसे पूरा का पूरा गन्ने के जैसा प्रोसेस किया, 500 के 500 मुनिराजों को, ठीक है. नाउ 500 के 500 मुनिराजों को वहां मारा जा रहा है और वो 500 के 500 मुनिराज वहां पर अपने शुद्धोपयोग की अग्नि से वहीं पर उनका मोक्ष हुआ, ठीक है. अंतःकृत केवली हुए वो, अंतःकृत केवली, ठीक है. 500 के 500 मुनिराज, मतलब बताओ पाप का उदय हमारा क्या कर सकता है. वहां उनको वो कोई मार रहा और वो यहां पर मोक्ष में जा रहे हैं, तो कुछ नहीं कर सकता. अब ये सब हो गया, अगले दिन वहां पर एक दूसरे मुनिराज आए, उनको पता पड़ा गांव में कि भाई सब यहां पर ये हुआ है. उनको इतना तेज गुस्सा आया कि मुनिराजों पर इतना बड़ा उपसर्ग. यहाँ पर वो यहाँ के श्रावक लोग क्या कर रहे थे, रे राजा कैसा है, मुनिराज के शरीर से अशुभ तेजस निकला. एक शरीर पुतला होता है, पुतला होता है शरीर पर, जब बहुत तेज कषाय होती है रिद्धिधारी मुनिराजों को या शुद्ध वीतरागी मतलब अपने भावलिंगी मुनिराजों को, जब बहुत तेज क्रोध आता है तो उनका क्रोध इतना भयानक होता है कि उनके शरीर में से एक जैसे कि आग का गोला निकलता है, फायरबॉल, ओके, और वो जाकर पूरे शहर को जला देता है और वो लौट कर आकर फिर मुनिराज को भी जला देता है. और जिन मुनिराज के होता है वो मुनिराज पक्का नरक में जाते हैं, ठीक है. ये भावलिंगी मुनिराज के ही होता है, द्रव्यलिंगी मुनिराज के नहीं होता. बट भावलिंगी मुनिराज को जब बहुत गुस्सा आता है तो उनके भावलिंग का छेद होता है, वो मिथ्या दृष्टि बनते हैं, उनके शरीर से फायरबॉल निकलती है, वो पूरे के पूरे शहर को जला देती है, ऐसी द्वारका द्वारजटायन मुनि के कारण जली थी, राइट, पूरे शहर को जला देती है और अल्टीमेटली उन मुनिराज को भी जला देती है और फिर वो नरक में जाते हैं। तो पूरा का पूरा वहां शहर जल गया और दंडक वन वो पूरा जल गया। अब ये जो राजा था, ये ही राजा बहुत सारे भवों में दुख भोगता हुआ जिसने किया था, ये राजा गिद्ध बना, ठीक है। गिद्ध, गिद्ध मतलब क्या होता है, वो ईगल, ईगल बना, ठीक है। और ये उस जंगल में बैठा हुआ है, राम और सीता उस जंगल में है और वहां पर मुनिराज का आहार चल रहा है। ये इसके ऐसे परिणाम हुए कि अरे काश मैं भी, और इसको वहीं पर तुरंत जाति स्मरण ज्ञान हुआ, जाति स्मरण ज्ञान हुआ उसको, पूरा अपना पुराना भव याद आया कि मैं कैसा जैन था, और वो एकदम से मतलब अचेत हो गया उसको, मतलब एक शॉक लगा, और वो ऊपर डाल में बैठा था, ऊपर डाल से सीधे नीचे गिरा। सीधे जैसे ही नीचे गिरा, मुनिराज विद्धिधारी थे, इसके परिणाम इतने शुभ थे कि मुनिराज के चरणों का स्पर्श पाकर उसके सारे पंख सोने के हो गए, गोल्डन बर्ड। इस पक्षी का नाम था जटायु, आपने रामायण में सुना होगा जटायु, सुना है जटायु का नाम?
हाँ,
जब सीता को रावण ले जा रहे थे तो एक पक्षी ने लड़ाई करी थी रावण से, फिर वो मर गया था। नहीं, आप लोग रामायण में नहीं सुना मानस? हेलो मानस, कभी आप लोग को?
हाँ जी,
आप लोगों ने रामायण सुनी है कि नहीं सुनी? रामायण महाभारत,
हाँ जी,
है ना, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सबको मतलब आप लोग पढ़ना है। अपने जैनिज्म की रामायण इज इन पद्म पुराण, पद्म पुराण आप प्लीज पढ़िएगा, एंड महाभारत इज पांडव पुराण जैनिज्म का, ये सब मतलब ये हमारे प्रथमान युग के एपिक शास्त्र है। इनको पढ़ने से कर्म के उदय, जीवों के परिणाम, जीवों के अलग अलग परिस्थितियों में कैसे कषाय भाव हो जाते हैं, परिवार वालों के प्रति तक कैसा भाव हो जाता है, ये सब पता पड़ता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये जटायु वही वाला, ये वही वही जिसने 500 मुनिराजों घानी में पहला, वही वाला जीव है। इसने अब अनुमोदना करी तो मुनिराज के दर्शन से इसको मात्र इतना इसके परिणामों में विशुद्धि हो गई। मुनिराज के दर्शन की बात कर रहे हैं, उनके आहार को देखने से इतने परिणाम की विशुद्धि हुई। मुनिराज के चरणों के पास की धूल से उसके जो पंख थे वो स्वर्णमय हो गए, और मुनिराज ने उपदेश किया तो उसने तुरंत सम्यक दर्शन अंगीकार किया और श्रावक के व्रत लिए, पांचवे गुणस्थानवर्ती हुआ। तब मुनिराज ने सीता जी से बोला कि ये अब पांचवे गुणस्थानवर्ती श्रावक है, इसको तुम अपने पुत्रवत पालना। तो अब वो सीता जी लोग और राम जी के साथ खाना खाता था, उसको प्रासुक मतलब उसको अंजना पानी नहीं चलता था और उसको बिना मर्यादा का कुछ नहीं भोजन चलता था। तो वो अब ऐसे पेड़ पत्ते फूल सब्जी ऐसे कुछ भी नहीं खा लेता था, सीता जी उसके लिए खाना बनाते थे और वो ही खिलाते थे, और वो अपने बेटे जैसा रखते थे राम और सीता, ठीक है, अपने पुत्रवत। तो ये सम्यक दृष्टि पंचम गुणस्थानवर्ती था। तो देखो, एक परमेष्ठी साधु परमेष्ठी है, उनके दर्शन में परिणामों में इतनी विशुद्धि हो जाती है। फिर मंदिर में तो तीन लोग के नाथ है, उनके दर्शन में तो क्या क्या नहीं होता कर्मों में। इसके लिए भगवान के दर्शन तो जहां तक बने करना ही करना, ये नहीं बोलना कि यार ये तो पुण्य बंद होगा, ये तो आश्रव है, कि भाई जब घर में टीवी के दर्शन होते तब आश्रव और पुण्य बंद और पाप बंद याद नहीं आता, मंदिर में ये सारी पूरी कहानी जितना तत्व ज्ञान है वो मंदिर में पूरा अप्लाई करने में याद आता है, कि जब तक निचली भूमिका है तब तक प्रशस्त कार्यों में ही वर्ता जाता है, अच्छे कार्यों में ही, बुरे कार्यों से बचने के लिए। और जब तक भगवान के दर्शन नहीं करोगे तब तक उनकी महिमा नहीं आएगी, उनकी महिमा नहीं आएगी तो आत्मा की महिमा कहाँ से आएगी। तो इसके लिए देव दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कौन से सच्चे देव हैं, कौन से सच्चे देव नहीं, किनके दर्शन में भाव विशुद्धि होती है, किनके दर्शन में नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कुदेव का प्रकरण अभी पूरा हुआ, नेक्स्ट क्लास हम गुरुदेव श्री का इस पर सीधी प्रवचन सुनेंगे, कुदेव का वर्णन, और फिर हम कुधर्म पर आएंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप सच्चे देव को मानो, सच्चे गुरु को मानो, फिर भी आप कुधर्म को मानते रहो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है उसमें। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्वरूप आएगा कुधर्म का, हम उसकी चर्चा इन द नेक्स्ट क्लास विल डू, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक इफ यू हैव प्लीज टेल मी, मुझको नहीं पता होगा तो मैं और पढ़कर आपको बताऊंगा, पूछकर आपको बताऊंगा, प्लीज। एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव। ठीक है,
थैंक यू सो मच अनुभव जी।
चलिए ठीक है, चलिए फिर जिनवाणी स्तुति करते हैं। समीर रिजुल, आप लोगों की आवाज बहुत दिनों से नहीं सुनी, आप लोग हो समीर रिजुल?
हाँ जी।
हाँ तो समीर आपने हाँ बोला है ना, आप जिनवाणी स्तुति करिए।
जवानी के ज्ञान से सुझे का लोक, जवानी मसकन मो सदा देत भूत होक।
नौ पाई का मौका।